अल्लाह ताला ने दुनिया को नेक अमल करने की जगह बनाई और फिर सारे इंसानों को नेक अमल करने के लिए पैदा किया। हर इंसान को माँ के पेट में माँ नहीं बनाती, अल्लाह बनाते हैं। सारा जिस्म अल्लाह बनाते हैं, बोलने की जबान अल्लाह ताला देते हैं, देखने की आँखें अल्लाह ताला देते हैं, सुनने के कान अल्लाह ताला देते हैं, काम करने के हाथ अल्लाह ताला देते हैं और चलने के लिए टांगे कदम अल्लाह देते हैं। और फिर इंसानों के रहने की खाने पीने की ज़रूरतें सब अल्लाह देते हैं। कोई नेमत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती। कितनी लाखों नेमतें दुनिया में अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया, नेक अमल के लिए बनाया। माँ के पेट में हर इंसान को माँ नहीं बनाती, अल्लाह ताला बनाते हैं। जब जिस्म बन जाता है तब फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को देते हैं, इस बच्चे के जिस्म के लिए रूह ले जाओ, माँ के पेट में उसके जिस्म में डाल दो। तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते रूह डाल ला कर माँ के पेट में बच्चे में डाल देते हैं। फिर जब ये पैगंबर भेजे अल्लाह का हुक्म है कि इंसान को सिर्फ इबादत करने के लिए बनाया, माल इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया। नूर भर देते हैं दिल में, नूर भर देते हैं। बचपन से पैगंबर हर वक्त अल्लाह के रजा का अमल करता है, गलत बात नहीं बोलता, गलत काम नहीं करता। जब पैगंबर की उम्र बड़ी हो जाती है तो फिर अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देकर भेजते हैं कि इस पैगंबर से कहो कि सारे लोगों को ये अमल सिखला। तो सारे पैगंबर का पहला अमल कलमा है और सारों का कलमा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारे पैगंबर इस कलमे के दावत देते थे। कलमे का आखिरी हिस्सा उस पैगंबर की सिफत का बयान होता है, इसलिए आखिरी पैगंबर का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो शक्ल किताब में आता है कि कुछ नेक लोग मक्का के करीब रहते थे, लोगों को नेक अमल सिखलाते थे। अब वो फौत होते रहे। जब सारे नेक लोग फौत हो गए तो लोगों ने सोचा कि नेक लोगों के सामने होने से हम नेक अमल करते थे, वो फौत हो गए हैं, अब उनके शक्ल के बुत बनाकर रख लें तो जैसे उनके पास अल्लाह के इबादत के अमल करते थे वो करते रहे। उन्होंने बुत बनाए थे नेक लोगों के तरीके पर अमल करने के सूरत बनाई। अब वो लोग तो सब उन नेक लोगों के कई शो बैतुल्लाह के पास भी रख दिए थे, वहां भी नेक लोग थे। लेकिन शैतान दुश्मन है, बाद लोगों के दिलों में डाल दिया, तुम्हारे बाप दादे यहाँ बैतुल्लाह में आकर इन बुतों के सामने सजदे करते थे। शैतानी असर से सब लोग बैतुल्लाह कि पांच जो नेक लोगों के शक्ल के बुत रखे हुए थे सब आकर वहाँ उनके सजदे करने लग गए। बैतुल्ला के पास भी गुनाह शुरू हो गया। तो जब लोग नेक अमल छोड़कर गुनाह में हो जाते हैं तो अल्लाह फिर आजाद के लिए पैगंबर भेजते हैं। तो उस वक्त अल्लाह तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के लिए भेजा। और आपका हाल आता ये है कि आपके पैदा होने के बाद थोड़े वक्त के बाद वालिद फौत हो गए। असबाब वालिद बनाता है वो फौत हो गए, लेकिन पैगंबरों के दिल में अल्लाह ताला दिल में नूर कामिल भर देते हैं कि सबको इस नूर को हासिल करने की कोशिश करें। तो इसलिए पैगंबर बचपन से भी दिल में नूर बड़ा होता है अल्लाह के रजा के अमल करते। अब जब आपकी इतनी उम्र हो गई खिदमत के काम कर सकते हैं तो आप जिनकी खिदमत की जरूरत होती अल्लाह की रजा के लिए उनके खिदमत के काम करते। कोई यतीम बच्चा है वालिद फौत हो गया, उस यतीम बच्चे के सारे जरूरत के काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते। कोई बूढ़ा हो गया काम नहीं कर सकता और उसकी औलाद कोई नहीं या औलाद है वो कहीं चली गई या कुछ हाल है, उन बूढ़ों की खिदमत भी आप करते। कोई बीमार हो गया बीमारी के हालत में उसका कोई खिदमत करने वाला नहीं, आप उस बीमार की भी खिदमत करते। तो अल्लाह ताला के पैगंबर तो बचपन से हर काम अल्लाह की रजा के लिए करते, खिदमत के काम भी अल्लाह के रजा के लिए। तो आपके खिदमत के कामों को देख कर सारी बस्ती वाले कहने लग गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे हैं, बड़ी खिदमतों के काम करते हैं, आप अल्लाह के रजा के लिए खिदमत के काम करते और जो अल्लाह के रजा के आमाल दिल में थे उन अमलों को करते। अब उसकाल ये हो गया कि वो नेक अमल फौत हो गया। तो लोगों ने सोचा कि उन नेक अमलों के पास बैठ कर हम अमल करते थे, अब उनके शक्ल के बुत बना कर रख लें, उनके पास उसी तरह अमल करें जैसे उनकी जिंदगी में करते थे। अभी मानते हैं कि बैतुल्ला में 360 नेक लोगों के शक्ल बना कर रख दिए। बैतुल्ला में भी आते तो अल्लाह के रजा के अमल करते, लेकिन बाद में शैतान दुश्मन है, उसने लोगों के दिल में डाल दिया कि तुम्हारे बाप दादे इन बुतों के सजदे करते थे। अब लोग बैतुल्ला में आकर बुतों जो नेक लोगों के शक्ल के रखे हुए थे उनके सामने सजदे करने लग गए। बैतुल्ला में भी गुनाह के काम शुरू हो गए। तो अल्लाह बड़े मेहरबान है, जब लोग गुनाह में हो जाते थे अल्लाह पैगंबर भेजते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के लिए भेजा। आपका रहता है कि आपके पैदा होने के बाद वालिद फौत हो गए थे, असबाब कोई नहीं थे, लेकिन पैगंबर तो हर वक्त नेक अमल करता। हुक्म आने से पहले आप खिदमत के काम बहुत करते। कोई बूढ़ा है उसकी औलाद कोई नहीं, खिदमत की हाजत है, आप उस बूढ़े की भी खिदमत करते। कोई बीमार हो गया बीमारी के हाल में उसका कोई खिदमत वाला नहीं, आप बीमारों की खिदमत करते। कोई बच्चा यतीम है वालिद फौत हो गया, उस बच्चे के कोई जरूरत की खिदमतें नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों की भी खिदमत का काम करते। अल्लाह की रजा के लिए इन कामों को देखकर सारे बस्ती वाले कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे हैं, बड़ी खिदमतें करते हैं। अब अल्लाह का हुक्म आप पर आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस वक्त का हाल ये था कि कुछ नेक लोग फौत हो गए, बैतुल्लाह के करीब रहते थे। जब फौत हो गए तो लोगों ने सोचा उन नेक लोगों से नेक अमल सीखते, उनके पास नेक अमल करते थे। वो फौत हो गए हैं, उनके शक्ल के बुत बना कर रख लो और फिर उनकी जिंदगी में जैसे अमल करते थे वैसे करो। अलीवाजा 360 नेक लोगों के बुत बनाकर बैतुल्लाह के पास रख दिए, लेकिन इबादत अल्लाह की करते जैसे उन नेक लोगों के सामने। शैतान दुश्मन है, बाद वाली जो औलादे थे उनके दिलों में डाल दिया, तुम्हारे बाप दादे इन बुतों के सजदे करते थे। अब लोग बैतुल्लाह के पास नेक लोगों के तकरीबन 360 शक्ल के बुत रखे हुए थे। बैतुल्लाह में जाते तो उन बुतों के सामने सजदे करने लग जाते। जो बैतुल्लाह रहमत की जगह थी वहाँ गुनाह शुरू कर दिया। तो अल्लाह बड़े मेहरबान है, जब लोग गुनाह में हो जाते तो अल्लाह पैगंबर भेजते। तो अल्लाह ने आजाद के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आपका हाल यह था कि आपके पैदा होने के थोड़े वक्त के बाद वालिद फौत हो गए, आप यतीम थे। लेकिन पैगंबरों के दिल में अल्लाह ताला बचपन से नूर भर देते हैं। तो जिनका दिल में नूर भरा हुआ हो वो हर वक्त नेक अमल करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई यतीम बच्चा है वारिस फौत हो गया उसकी खिदमत के काम करते, कोई बूढ़ा हो गया औलाद कोई नहीं या औलाद कहीं चली गई वो खुद कुछ नहीं कर सकता, आप बूढ़ों की खिदमत करते। यतीमों की बूढ़ों की कोई बीमार हो गया बीमारी में उसकी खिदमत अलग कोई नहीं, आप बीमारों की खिदमत अल्लाह के रजा के लिए करते। तो खिदमत के काम आप इतने करते थे, लोग कहने लग गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे मर्द हैं, बड़ी खिदमतें करते हैं। अब जब वहाँ पर अल्लाह का हुक्म आ गया कलमे का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया कब सारी दुनिया वालों को कलमा पढ़ाओ, क्योंकि जो मौत से कलमा नहीं पढ़ेगा मरते ही दोजख के अजाब में जाएगा। आप पर हुक्म आ गया तो आपने फिर बैतुल्लाह के पास नेक लोगों के बुत रखे हुए थे, लोग बैतुल्लाह में आकर बुतों के सजदे करते थे। तो आप कलमे की दावत देते, कलमे के माना इबादत के लायक को, ला इलाहा इल्लल्लाह इबादत के लायक कोई नहीं मगर एक अल्लाह। इबादत कैसी करनी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो जो बता रहे हैं उस इबादत को करो। अब जो भी कलमा पढ़ लेता वो बैतुल्लाह में जाते था। आम लोग तो नेक लोगों के जो बुत रखे हुए थे उनके सामने सजदे करते, लेकिन कलमे का माना यह है इबादत के लायक कोई नहीं मगर एक अल्लाह। और इबादत कैसे करनी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उन्होंने जो इबादत बताई वो करनी है। तो कलमा पढ़ने वाले से बैतुल्लाह में भी जाकर बुत 360 रखे हुए थे वो किसी बुत का सजदा नहीं करते थे। और आम लोग बुतों के सजदे करते थे, जो सजदा न करते उसे कहते यहाँ इनके सामने सजदा करो, तो कलमा पढ़ने वाला जब किसी सजदा नहीं करता तो कलमा पढ़ने वाला सजदा न करता तो काफी उसे मारते के यहाँ क्यों नहीं सजदा करता हमारे कहने से। युवाते अब्बास को इतना मारा उनके मारने से वो फौत होगा, और जो कलमा पढ़ रहे था बैतुल्लाह के पास 360 बुत नेक लोगों के रखे हुए थे, वो सजदा वहाँ नहीं करता था, नमाज पढ़ता तवाफ करता। और हज पर जो आते तो हर इलाके वाले पूरी जमात छाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जमात को दावत देते। तो एक साल मदीने वाले को छोड़े आए, उनको दावत दी, उन सब ने कलमा पढ़ लिया। फिर दूसरे साल हज पर कुछ ज्यादा आए, उनको दावत दी, उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। तो गालिबन तीसरे साल मदीने वाले कोई 70 के करीब आए, उनको दावत दी, उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ वाले सारे लोग आपका कलमा नहीं पढ़ते, अल्लाह ने हमें कलमा पढ़ने की तौफीक दी, आप हमारे साथ मदीना चलो। आपने फरमाया कि मैं तो हर काम अल्लाह के हुक्म से करता हूँ, जब तक अल्लाह का हुक्म मक्का छोड़ने का ना आए तब मैं मक्का छोड़ कर कहीं नहीं जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना साहबी को हमारे साथ भेज दे, जो हमारे सारी बस्ती और सारे इलाके को कलमा पढ़ा। तो आपने कोई साहबी उनके साथ भेज दिए। उस साहबी के जाने से मदीने वालों ने भी आपसे नहीं कलमा पढ़ लिया, और फिर वह जमात बनाकर दूसरी बस्ती में जाते, उनको दावत देते, तो अक्सर बस्ती में लोग अक्सर कलमे पर आ गए। अब मक्के के जो आपका कलमा नहीं पढ़ते थे, उन्होंने सोचा कि हमारे बाप दादे तो सब बुतों के सजदे करते थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक रहा है बुतों से, इनको कत्ल कर देना चाहिए। उसे सोचा कि सारे कबीले से कातिल मुकर्रर किए जाए, सारे कबीले वाले कातिल बनेंगे तो इनके रिश्तेदार सारे कबीलों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो तब तकरीबन 100 से कुछ कम कत्ल के लिए आपके बस्ती के बाहर लाइन बनाकर बैठ कर अब निकलेंगे कत्ल करेंगे। जब उन्होंने कत्ल की तरतीब बना ली तो अल्लाह ने हुक्म भेज दिया कि अब आप मक्का छोड़ के मदीना चले जाओ। आपका जो अल्लाह का हुक्म होता था वो करते थे। आप रात को निकले, जिक्र करते हुए मट्टी उठा कर फेंकी, अल्लाह ने वो मट्टी सब की आंखों में डाल दी, और सारे आंखों को मलने लग गए, और आपने कल कर मदीने पहुंच गए। तो मदीने का माहौल दीन का था, तो इसलिए आपने मशवरा किया कि अब सारी बस्तियों को कलमा पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जो मौत तक कलमा नहीं पढ़ेगा, अल्लाह की रजा कलमे में है, जो मौत तक कलमा नहीं पढ़ेगा मरते ही दोज़ख की आग में जाएगा। तो इसलिए फिर मदीने के सहाबा जमात बनाकर बस्तियों में जाते और उनको कलमे की दावत देते, अक्सर बस्तियाँ कलमा पढ़ लेते। और जो कलमा न पढ़ता तो उसे कहते कि इस बस्ती में तुम नहीं रह सकते, जब कलमा नहीं पढ़ते उसे कहते निकल जाओ यहाँ से। जो कलमा न पढ़ते उनको निकाल देते। तो इस तरह मदीने की काफी बस्तियां भी कलमे और नमाज पर आ गई। मक्के में भी खबर पहुंच गई कि मदीने वाले थे सारे लोग मदीने वाले और इलाके वाले उनके कदमे पर आ गए, बाप दादे के बच्चों को छोड़ दिया, ज्यादा फौज बनाकर इनको कत्ल करना चाहिए। काफ़ी शैतान ने दिल में डाला, मक्के वाले फौज बनाकर आ गए। आप तक खबर पहुंच गई कि मक्के वाले फौज ले आए, तो आपने साबन से कहा कि वो फौज मदीने में ना आए, जहाँ ठहरी हुई है वहीं जाकर उनका मुकाबला किया जाए। तो गालिबान कोई 360 साबन तैयार हो गए। जहाँ मक्के वालों का लश्कर था करीब पहुँच कर रात को ठहर गया और अल्लाह से दुआ मांगते रहे कि अल्लाह हमें अल्लाह आपका कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब ये मक्के वाले कत्ल करने के लिए आ गए, आप हमारी हिफाजत फरमाए, क्योंकि कलमा पढ़ने वाले जानते थे सब काम अल्लाह करते हैं। रात को दुआएं मांगते, जब सूरज निकलने के बाद लड़ाई के लिए खड़े होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की दुआ पर कई फरिश्ते भी उनकी मदद के लिए भेज देते। काफी भी देखते कि आसमानों से भी फौज इनकी मदद के लिए आ रही, तो किताबों में आता है कि तकरीबन 3 मिनट लड़ाई के बाद काफी भाग जाते थे, सामान छोड़ जाते थे। तकरीबन 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट लड़ाई शुरू होने के बाद सामान छोड़कर भाग जाते। तो बस ये अक्सर कलमा पढ़ने पर आ जाते, और जो कलमा न पढ़ता उसे कहते इस बस्ती में तो बोल रहेंगे, जो कलमा पढ़े जो कलमा नहीं पढ़ते वो कहीं और जगह चले जाए, उनको निकाल देते। सारी बस्तियाँ कलमे पर आ गए, जो कलमा न पढ़े उसे बस्ती से निकाल देते थे। फिर हाल आते है कि बस रस्सी वालों ने ये सोचा कि हम कलमा न पढ़े तो हमें निकाल देंगे, लिहाजा हम भी कलमा पढ़ रहे। दिल से नहीं मानते, सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने के लिए कि हम भी कलमे वाले बन गए, वो कलमा पढ़ लेते और जोर और असर की नमाज में सूरज की रोशनी होती थी तो उस वक्त भी नमाज में खड़े हो जाते थे। मगरिब इशा सुबह में पूरी रोशनी नहीं होती थी, उस वक्त मस्जिद में नहीं आते थे। अल्लाह का हुक्म आ गया कि जो कलमे को दिल से नहीं मानते, बस्ती में रहने के लिए कलमा पढ़ने लग गए हैं और जोर से की नमाज में खड़े हो जाते हैं, नमाज को नहीं मानते, ये मुनाफिक हैं। जो दिल से नहीं मानते, धोखा देने के लिए कलमा पढ़ते हैं, ये भी मरते ही दोज़ख के अज़ाब में जाएंगे, क्योंकि कलमा पढ़ना दिल से हक मानकर, नमाज पढ़ना अल्लाह का हुक्म मानकर, तो ईश्वर बरकतें आती हैं। मुसलमानों को धोखा देने के लिए कलमा पढ़ने लग जाए और जोर असर में नमाज में खड़ा होते रहे तो अल्लाह का हुक्म आ गया, ये मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है, ये भी मर्जी ही दुनिया के अज़ाब में जाएगा। क्योंकि असल हक यह है कि दिल से हक मान कर कलमा पढ़ना, फिर अल्लाह के हुक्म को हक मान कर नमाज़ें पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, इन अमलों को जो करेगा उस पर जन्नत की नेमतें मिलेंगी कलमा पढ़ने के बाद। तो इस और फिर ये भी आपने तय कर दिया कि सारी दुनिया में जो कलमा नहीं पढ़ेगा वो दोज़ख में जाएगा, इसलिए आपने आज के मौके पर फरमा दिया अब सारी दुनिया वालों को कलमा पढ़ाने की कोशिश करो। इस आता है कि साहबा फिर हर साल 4 महीने या 6 महीने जिस मुल्क का मशरा हो जाता वहाँ जाकर लोगों को कलमा पढ़ाते। जो कलमा पढ़ रहे थे उनको फिर सुनते भी सिखलाते। और जिनकी फौज होती वो कहते हम तुमसे लड़ाई करेंगे, तो लड़ाई करते थे किताब में आते आके दो तीन मिनट लड़ाई के बाद वो भाग जाते, सामान भी छोड़ जाते। साबर से जो काफी लड़ाई करने के लिए खड़े होते तो तकरीबन तीन चार मिनट के बाद फिर भाग जाते, सामान छोड़ जाते। और जो कलमा पढ़ लेते साबा उनको फिर नमाजे सुनते सिखलाते, और उनको भी कहते कि हर साल चार महीने छः महीने काफिर को कलमा पढ़ाने की कोशिश करो। इसलिए साबा से जो कलमा पढ़ते उनका नाम ताबेईन कहते हैं, और ताबेईन भी फिर हर साल चार महीने या कमोबेश मशहूर से अल्लाह के रास्ते में लगाते थे। तो बाद क्या आते हैं कि कुछ साबा ऐसे थे कि अगर कोई पूरी जमात तैयार ना हुई थी वो अकेले भी काफिरों के मुल में चले जाते, उनको कलमा पढ़ाते। एक काफिरों के मुल्क में एक साहबी अकेले आए, मौत तक उनको कलमा पढ़ाते रहे, फिर फौत होकर जो उन कलमा पढ़ने वालों ने उनकी कब्र बना दी, उस कब्र पर लिख दिया कि ये साबित थे और आकर लोगों को कलमा पढ़ाते सुनते पढ़ाते। अक्सर तब जमात बन कर जाते, लेकिन बाद मौके पर जमात न तैयार होती तो साबा कोई अकेले भी काफिर के मुल्क में जाकर उनको कलमा पढ़ाते। और जो कलमा पढ़ रहे उनको भी कहते कि हर साल चार महीने के चालीस दिन की जमात बनाकर काफिर को कलमा पढ़ाओ। तो फिर वो ताबेईन भी हर साल चार महीने छः महीने अल्लाह के रास्ते में लगाते थे। तो इस तरह सारी दुनिया में दीन पहुँचा है साबा की मेहनत से और ताबेईन की बद मेहनत से। तो हदीस में फरमा दिया जो जिन हजरात के मुताबिक अमाल की कोशिश करेगा क़यामत में उस जमात में अल्लाह शामिल कर देगा। तो अला जमात साबा किया है वो हर वक्त अल्लाह के रास्ते में जो मशवरा हो जाता जाने का अल्लाह के रास्ते में जाते थे, और अपने मकाम पर भी हर एक को सुन्नत अमाल का पाबंद।
www.dasquran.com